ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। दिल्ली नगर निगम में आज सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फर्जी पासपोर्ट पर लोगों को विदेश भेजने वाले दो एजेंट गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ स्थित आयकर विभाग की इमारत में अचानक आग लगने से एक व्यक्ति की मौत, छह अन्य घायल। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ तस्वीरों और पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली के सात लोकसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की चार लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और तीन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिल्ली की सातों सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
राजधानी की सभी सात लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी के कमला नगर इलाके में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी के पक्ष में जनसभा की। वहीं इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने स्थानीय विधायकों के साथ गोकुलपुरी और गंगा विहार इलाके में पदयात्रा की। इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने गांधीनगर इलाके में एक रोड शो किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मटियाला क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं इसी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के पक्ष में राज्यसभा सांसद संजय सिंह थोड़ी देर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने करोलबाग क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं इसी सीट से भाजपा की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने नेपाली कैंप वसंत विहार में डोर टू डोर कैंपेन किया। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने आज वजीरपुर जीजे कॉलोनी में पैदल यात्रा की। वहीं इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने आज पहाड़गंज इलाके में कारोबारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में सात लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए
आम आदमी पार्टी ने आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को निशाना बनाया। दिल्ली के मंत्री और पार्टी के नेता गोपाल राय ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा को आरोपी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने वाले नेताओं को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने पर उन्हें क्लीन चिट दे देती है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असफल रहने का दोषी ठहराया। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए दिल्ली कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुछ कारोबारी समूहों ने आर्थिक प्रगति को एकाधिकार बना लिया है, इसका प्रतिकूल असर युवाओं पर पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। दिल्ली नगर निगम में आज सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित हो गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने निगम में दलित महापौर की नियुक्ति और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए बदसलूकी का मामला उठाया। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबराय ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद निगम के किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले डेढ़ वर्ष से कोई भी समिति नहीं बनने दी है।
देखिए, हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, उनकी मंशा यही है कि कोई भी एमसीडी का मुद्दा उस पर चर्चा ना हो, और इस बार भी हम चाहते थे कि चर्चा हो। एमसीडी के बहुत सारे इश्यूज हैं, दिल्ली की जनता के काम हैं। पिछले एक डेढ़ साल से आप देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनने दी, ना कोई स्पेशल कमेटी बनने दी, ना वार्ड कमेटी बनने दी, और हर प्रकार का खलल है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है।
इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद श्रवण दीक्षित और कांग्रेस नेता तथा पूर्व पार्षद सुशील तिवारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आम आदमी पार्टी को कथित आबकारी नीति घोटाले में आरोपी बनाया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह बात पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। निदेशालय ने बताया कि मामले में जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस बीच दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फर्जी पासपोर्ट पर लोगों को विदेश भेजने वाले 2 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कनाडा जाने वाले एक यात्री के दस्तावेजों का मिलान न होने पर इन एजेंट का खुलासा हुआ। पुलिस उपायुक्त आईजीआई उषा रंगनानी ने बताया कि ये एजेंट दूसरे नागरिकों के नाम से जाली पासपोर्ट तैयार करते थे और लोगों को विदेश भेजते थे। पकड़े गए दोनों एजेंट पंजाब से हैं। एक एजेंट के खिलाफ पंजाब पुलिस में पहले ही मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक वृद्ध महिला को उसके परिजनों से मिलवाया है। 68 वर्षीय ये महिला असम से अपने परिजनों के साथ दिल्ली घूमने आई थी और लाल किला घूमने के दौरान परिवार से बिछड़ गई। उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा ने बताया कि महिला के लापता होने की सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाई और महिला को लाल किला क्षेत्र से ही तलाश कर एक वृद्ध आश्रम में भेज दिया। बाद में पुलिस टीम ने महिला को उसके परिवार को सौंपा। परिवार ने दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी के आईटीयू स्थित आयकर विभाग की इमारत में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 6 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। अग्निशमन विभाग ने बताया है कि दोपहर 2:15 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां भेजी गई। इमारत में फंसे लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कल कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार मामले की आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने निंदा की है। आज एक प्रेस वार्ता में श्री संजय सिंह ने बताया कि इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घटना का संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि इस घटना से यही पता चलता है कि आम आदमी पार्टी कितनी असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आवास पर किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर श्रीमती मालीवाल से बदसलूकी होने की खबर सामने आई थी। दिल्ली के चार अस्पतालों में बम होने की सूचना को दिल्ली के दमकल विभाग ने अफवाह करार दिया है। दिल्ली के चार अस्पतालों गुरु तेग बहादुर जीटीबी, दादा देव हेडगेवार और भगवान महावीर अस्पताल में अलग अलग ईमेल के माध्यम से बम रखे जाने की सूचना मिली थी। इस पर संज्ञान लेते हुए दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमों ने अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन चलाया। आकाशवाणी से बातचीत में दमकल विभाग ने ऑपरेशन के दौरान अस्पतालों में किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री नहीं मिलने की पुष्टि की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ तस्वीरों और पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें गुरुदेव के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की तस्वीरें और उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग भी शामिल हैं। ये संग्रह उनके पर्यावरणीय प्रयासों और फ्रांस के साथ संबंध को भी प्रदर्शित करता है। रेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फाबिया शाटिये ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री टैगोर की पेंटिंग्स की वैश्विक लोकप्रियता के बारे में बताया।
So let's talk about the paintings of Rabindranath Tagore and the fact that it was in 1930 that he exhibited his paintings in France. He chose France not by chance, but because he felt it was necessary for him to judge or to assess himself through the eye of Western experts and then go back to India and say, you see, my work is recognized.
10 दिन की इस निःशुल्क प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के जनपथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की दीर्घा में किया गया है। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के लिए खुली है। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि यह समावेशन भारत के लिए गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को और आगे ले जाने का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदया लोकन ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने एशिया प्रशांत विश्व समिति की 10वीं अनुस्मरण बैठक के दौरान इस ऐतिहासिक क्षण को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 40 पर्यवेक्षकों और नामितों के अलावा सदस्य राज्यों के 38 प्रतिनिधियों ने उलान बटोर की इस बैठक को संचालित किया। इन तीन नामांकनों को समर्थन देकर IGNCA ने यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में इन साहित्यिक कृतियों के स्थान को सुनिश्चित किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आकाशवाणी को अधिक प्रभावी लचीला संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आकाशवाणी को डिजिटल माध्यम से श्रोताओं तक और अधिक पहुंच बनाने को भी कहा।
जानकारी के अलावा जो कार्यक्रम है उसे रुचिपूर्वक बनाना ताकि एक व्यस्त मनोरंजन जो है वो हम अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो लोग हैं वहां तक पहुंचा सके। आकाशवाणी को एक इफेक्टिव फ्लेक्सिबल और एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ये हमको करना चाहिए। डिजिटल में पॉडकास्ट में यूट्यूब पे और भी जो माध्यम है डिजिटल जैसे पॉडकास्ट के प्रसारण के उसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचना चाहिए।
श्री सहगल ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से बातचीत की। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 5वें ओवर में 1 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। दिल्ली नगर निगम में आज सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फर्जी पासपोर्ट पर लोगों को विदेश भेजने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी के ITO स्थित आयकर विभाग की इमारत में अचानक आग लगने से 1 व्यक्ति की मृत्यु, 6 अन्य घायल। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ तस्वीरों और पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।